Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो जिस प्रकार बादल अनादि है और शांत है, अंत हो जाता है, वर्षा हो गई या हवा से छट गया बादल, ऐसे जीव और अविद्या अनादि होते हुए शांत है, ये अनंत नहीं है, इनका तत्व ज्ञान से नाश होता है। तो अनादि अनंत परमात्मा है। कलिलस्य मध्ये, अब किसी ने पूछा कि ऐसा परमात्मा है, उसका दर्शन कैसे होगा, कहां पर होगा? तो सबसे बढ़िया जगह प्रेमपुरी का सत्संग भवन, यही दर्शन होगा और कहीं नहीं। कलिलस्य, कलिल बोलते हैं ये जो बड़ा गंभीर संसार है ना, इस संसार में कलिल मन ले कि बहुत गहन है, गंभीर। ऐसे कलिल शब्द का वाच्यार्थ है कि बहुत घनघोर अंधकार, जहां की कालुष्य का साम्राज्य। कलिल मतलब कालुष्य का साम्राज्य, जिस प्रकार गुफा है, गहवर है, उसमें जाने के बाद कुछ दिखता है नहीं, ऐसा कलिल है उसमें। तो ये संसार भी कैसा है, बड़ा गहन गंभीर है, रूप रस गंध स्पर्श वासना कामनाओं के कलिल से घिरा हुआ है, उसके बीच में है। विश्वस्य सृष्टारम् अनेक रूपम्। अब उस गुफे में यदि आपको कुछ देखना हो, गुफा में क्या चीज है, तो रोशनी चाहिए। ऐसे यहां पर आत्मविद्या की रोशनी चाहिए, उससे उसका अनुभव होगा। अब किसी ने पूछा, अच्छी बात है, अनादि है, अनंत है, संसार जो गहन गंभीर उसके बीचों बीच है, जो हमारा हृदय देश है ना, ये क्या है, बीच है, मध्य है। रुद्राष्टाध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, क्या है, सहत सिरे का पुरुख सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिगु सर्वत स्थित्वा त्यतिष्ठत दशांगुलम। दस अंगुल ऊपर है नाभि से, दस अंगुल नाभि नहीं, यहां से दस अंगुल देख लो, हृदय आ गया। नाभि से दस अंगुल ऊपर अतिष्ठत विराजमान होकर बैठा है वह पुरुष। तो वह जो हृदय देश है, बड़ा कलील है, वहां अंधकार है, इतनी वासना कामना है कि कल्पना नहीं कर सकती, उसमें बैठा हुआ है। विश्वस्य सृष्टारम्, वही विश्व का सृष्टा है। पंचदशी में स्पष्ट कर दिया है कि शुद्ध सत्व प्रधान जो माया है, उसमें जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, उसका नाम ईश्वर है। और ईश्वर ने जीव इस शरीर में प्रवेश पर्यंत सृष्टि किया, यहीं तक उसकी मर्यादा है। पृथ्व्यादि संसार को उत्पन्न करके शरीर को बनाकर शरीर में प्रवेश कर गया, यहां तक परमात्मा की सृष्टि। तदैच्छत बहुश्याम प्रजाय से प्रारंभ हुआ, तदैच्छत बहुश्याम प्रजाय, और अनेन जीवित आत्मनानु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरमाणी, यहां तक अंत। इसके आगे विचार ईश्वर ने कुछ नहीं किया, बिना मतलब का दोह देते भगवान को, यहीं तक ईश्वर की सृष्टि। और जीव की सृष्टि क्या, तो अशुद्ध जो अशुद्ध कह मलिन बात एक ही है, अशुद्ध का अर्थ मलिन होता है। तो मलिन सत्व प्रधान जो अविद्या है ना, संस्कृत में शुद्ध बोलते, हिंदी मलिन बोलते, तो जो मलिन सत्व प्रधान अविद्या है, उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य का नाम जीव है। कि जीव ने क्या किया, तो बस कर्ता भोक्ता जागृत अवस्था बनाया, जागृत अवस्था बनाने पर परेशान हो गया, कंटाल गया, बनाया खुद इसने। जागृत अवस्था करता जीव है, ईश्वर नहीं। जागृत अवस्था में आपने जो यह माना कि यह मेरा, ये तेरा, ये मेरा मकान, ये मित्र का मकान, शत्रु का मकान, ये पड़ोसी है, वही करता, जीव करता है। तो वहां तक माने तो कोई बुराई नहीं, पर इसको छलांग लगाने की आदत है, छलांग लगाता है ज्यादा। व्यवहारिक माने तब तो कोई क्षति नहीं, पर जीवात्मा व्यवहारिक नहीं मानता, एक कदम ज्यादा छलांग लगाता है, जो रेखा है ना छलांग की, उससे एक कदम ज्यादा लगा लिया, पारमार्थिक मान लेता है। परंतु वहां जब मजा नहीं आया तो स्वप्नावस्था एक कल्पना कर लिया, वहां भी संतोष नहीं हुआ, सुसुप्ति में चला गया। कोई पुण्यात्मा मोक्ष तक यात्रा करता है कि बंधन है, इससे छुटकारा पाना, मोक्ष होना है। ये जो संसार है ना जीव का है, तो जीव की सृष्टि है जागृत से लेके मोक्ष पर्यंत, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और मोक्ष, यहां तक संसार जीव राम की है। इसलिए कभी दोनों का गड़बड़ नहीं करना। परमात्मा ने तो आपको इतना बढ़िया शरीर बना करके अंदर बैठ गया, बस अब आ गया आपकी जिम्मेदारी। पर आप क्या करते हैं, अपना पराया करके जागृत अवस्था बना लिए, उससे ऊब गए, परेशान हो गए तो स्वप्नावस्था, उसमें भी थक गए सुसुप्ति में गए, फिर बंधन मान लिए, फिर मोक्ष, यहां तक जीव की सृष्टि। तो कहते पूरे विश्व का सृष्टा है, अनेक रूप है, यही इंद्रादि बन के शासन करता है, यम बनकर प्रशासन करता है, काल बनकर सबका हरण करता, वही चैतन्य, अनेक रूप। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम्, पूरे विश्व को एक यही व्याप्त करके रखा है, पूरे संसार को यही व्याप्त करके रखा। देवम ज्ञात्वा सर्वपाशे मूच्यते, ऐसे देवता को, परमात्मा को जानकर सारे पासों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। अब आप में से कितने मुक्त होना चाहते हैं बताओ? हाँ, सबसे पहले उमा बहन मुक्त होना चाहती, इसके बाद में दो नंबर पीछे पुरुष लोग, मतलब पीछे रहते हैं मुंबई में, माताएं बहने आ गए। तो मुक्त होना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर पास को जानना पड़ेगा, पास है वो, पास क्या, वासना है, कामना नहीं, मुख स्वरूप तो है, ये तो है ना, ये वेदांत ऐसी चीज है ना, वेदांत जिसने पढ़ लिया उसके सामने कोई वकालत में ठहर नहीं सकता है। दुनिया के उस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी फेल हो जाएंगे। हाँ, एक बार वेदांत जी के सामने, आपके सामने आ जाएंगे ना, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज भी फेल। अब बोले कि मुक्त हो जाएगा, बोले मुक्त क्या होगा, मुक्त तो है ही, आत्मा का स्वरूप है, अब आगे क्या बोलेंगे, कोई उत्तर ही नहीं। तो बोलेगा मुक्त है तो रोते क्यों हो, तो बोलेगा मैं तो रोकता हूं, शरीर रोता है, यहां भी समाधान हो गया। मतलब वेदांतियों के पास हर चीज का समाधान, कहीं व्यवहारिक मान लेगा, कहीं परमार्थिक मान के उत्तर देगा, कभी औपाधिक, कभी स्वरूप, कितना उत्तर वेदांत के पास बहुत है। तो देखो नारायण है, हाँ पास, तो पास क्या है, तो अविद्या, वासना, कामना को पास कहा। पंच कंचुक जिसको आगम में कहते हैं ना, वही पास। पंच कंचुक क्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच पास लगे हैं आपको। और ये पास दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई पड़े तो तुरंत काट दें, वो आपके अंतःकरण में जन्म जन्म से पड़ा हुआ है। हाँ देखिए, अविद्या का अर्थ होता है, पहले अविद्या है, अविद्या का अर्थ होता आतस्मिन तद बुद्धि का अर्थ अविद्या। जिस प्रकार से हम जो है ना, इस 3.5 हाथ वाले 70 किलो की जो मिट्टी है ना, वह नहीं हो सकते, परंतु हमने मान लिया वह मैं हूं। इसके बाद हम कभी मतलब कि अशुद्ध नहीं हो सकते, पर आत्मा को शुद्ध मान लिया। हम नित्य हैं, पर आत्मा को अनित्य मान लिया। आत्मा नित्य चैतन्य जड़ मान लिया। यह अविद्या है, ना समझिए। ना समझी से घर में भी परिवार में माहौल कितना गर्म हो जाता है, जरा सी ना समझी। और अक्सर विवाह ना समझी से होता है। एक बार हम 4 महात्मा मान लो ठंडी के दिन में विचार रहे थे, तो उसमें शुक्र शनि आदि की चर्चा थी, संस्कृत में लिखा था। तो एक जो बैठे थे नीचे महात्मा, वो भोले भाले थे, उनको इतना ज्ञान नहीं। तो शुक्र शनि की बात आए तब उनको लग गया, ये सब मिलकर मुझे ही शुक्राचार्य और शनि देव बता रहे। एकाध महीने के बाद बोले कि आप लोग हमको बार बार शुक्र शनि करके नीचे देख रहे थे। हम लोगों ने कहे पुस्तक में लिखा था, शुक्र शनि का प्रसंग था, संकेत में लिखा था। बोले नहीं, वो हमारे पे इशारा था। अब देखो ना समझी से उनको बड़ा विक्षेप। बाद में किसी तरह से समझाए, समझ नहीं पाए तो कन्ना पला के ठीक है भाई, मान लो हमने आपको कहा है, आप क्षमा कर लो। तो संतुष्ट हो गए, चलो क्षमा मांग लिए लोगों ने। तो देखो ना समझी से होता है ना विवाद, ऐसे यहां पर भी ना समझिए। ये शरीर है, शरीर को शरीर मानना अच्छी बात है, बुद्धिमानी है। हम शरीर को शरीर नहीं मानते, आत्मा मान लेते, कितने भी ना समझी। इसी का नाम अविद्या। अब अस्मिता है, अस्मिता बोलते हैं दृग दृश्यो एकात्मतैव अस्मिता। दृक मतलब कि आत्मा, दृश्य मतलब अनात्मा, आत्मा अनात्मा का तादात्म हो जाना अस्मिता है। और अस्मिता होने के बाद मैं हम बोलते हैं, अहंकार हो जाता है। अविद्या के बाद दूसरा कदम अस्मिता का आता है। पहले ना समझी हो गई, ना समझी के बाद अभिमान हो गया, यही मैं हूं तादात्म्य। अस्मिता के बाद राग, अब शरीर के संबंधी अनुकूल वस्तु में राग हो गया। फिर दूसरा है द्वेष, प्रतिकूल में द्वेष। अभिनिवेश बोलते हैं मरण त्रास को, मरण भय। आप आत्मा अजर अमर है, परंतु अभिनिवेश है, दुराग्रह है कि नहीं मैं मर जाऊंगा। शास्त्र बार बार चिल्ला कर बोला कि तुम आत्मा हो, शुद्ध बुद्ध मुक्त, न तुम्हें अग्नि जला सकती, न हवा सुखा सकती, न पानी गीला कर सकता, न शस्त्र काट सकते। ये पक्की बात है ना, फिर भी अभिनिवेश है, हाय मैं मर जाऊंगा, मरने वाला हूं, होता है कि नहीं। इसी को अभिनिवेश बोलते हैं। स्वर सवाही विश्वपी तथा रूढ़ो अभिनिवेश, योग दर्शन में बताया। एक स्वर मन सांस भर में जन्मता है, और जन्मने के बाद जैसे हम लोग बच्चा कच्चा पैदा करते हैं, वह भी कर लेता है, समाज छोड़े और लिए। इतने समय में 100 वर्ष का अनुभव होता है एक जीव को, वो जीव का नाम है स्वर सवाही जीव। फिर समझा रहे ना, नहीं समझी थी तो मुझे बोलना पड़ रहा, नहीं तो क्यों बोलना पड़ता। स्वर सवाही एक जीव है, कीटाणु। एक श्वास भर में जो 100 वर्ष का अनुभव कर ले, उसको स्वर सवाही जीव बोलते। श्वास आपने छोड़ा और लिया, इतने भर में अनुभव करता है वह जीव, और 100 वर्ष का अनुभव करता है कि हमारे बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे, पोता पर पोता हो गए, मर भी गया, इतनी थोड़ी आयु। हाँ, उसके लिए 100 वर्ष की अनुभूति हो जाती, उसको भी मरण का मौत का भय रहता है, ऐसे विद्वान को। अब बताओ श्वास लिया छोड़ा क्या इसका कीमत है? कोई कीमत है? एक श्वास में मतलब कि उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के बाद जीवन धारण किया, संतान का विस्तार किया और मर गया, उसको ही मौत की भय, उसी को कहते हैं विनिवेश। ऐसे विद्वान को है, विद्वान को तो नहीं होना चाहिए ना, वो तो ना समझ जीव है। ब्रह्मा जी की श्वास के समान हम लोगों का जीवन है, एक श्वास भी नहीं, आधा से आधा श्वास होगा, उससे भी कम होगा। उतने में हम लोग उत्पन्न हुए और मुंबई में बड़ा कारोबार करके, व्यापार करके परेशान और गिनते भगवान उठा लो, ब्रह्मा जी के एक श्वास, इसी का नाम है अभिनिवेश। मरण त्रास, मरण के त्रास को, भय को कहते अभिनिवेश। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम्, ऐसे देव को जानकर सारे पासों से मुक्त हो जाता है। भाष्य देखिए, अनाद्य अनंतम इति, अनाद्य अनंतम, आद्यंत रहितम, आदि और अंत से रहित है। कलिलस्य का अर्थ करते हैं कलिलस्य मध्य गहन गंभीर संसार मध्य, ये संसार बड़ा गहन है, गंभीर है, इस संसार के बीच में है, बाहर नहीं, संसार के बीच में ही है। विश्व सृष्टारम, संसार का सृष्टा कर, सृष्टा है, उत्पादिता है। अनेक रूपम, अनेक उसके रूप हैं, देवता दानव दैत्य सब वही है, उससे बिन कुछ भी नहीं। अनेक रूपम विश्व से एकम परिवेष्टितारम, पूरे संसार के एक ही जो परिवेष्टन बोलते हैं आच्छादन को, परिवेष्टन शब्द का हिंदी में अर्थ है आच्छादन। ये पुस्तक को जो बांधते हैं ना, उसको परिवेष्टन बोलते। तो पूरे संसार में वही व्याप्त है, उससे भिन्न कोई चीज नहीं है। स्वात्मना संव्याप्य वचितम, अपने स्वरूप से सब में व्याप्त है। जिस प्रकार मिट्टी सर्वत्र व्याप्त है, शरीर में भी मिट्टी है, शरीर के बाहर भी मिट्टी, पर हम लोग इसको शरीर मान लिए और जो बाहर वाले को मिट्टी। हाँ, ऐसे मिट्टी की व्यापकता घट पटारी सारे पदार्थों में है, ऐसे ही सबका अधिष्ठान वही चैतन्य है, उसमें सब कुछ अध्यस्त है, आरोपित है। ऐसे देव को ज्ञात्वा जान करके ज्योति रूपम परमात्मान मोचति सर्वपाश्य विद्या काम कर में, देखो साफ लिख दिया, वो स्वयं प्रकाश परमात्मा है। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को जान करके सारे पासों से, पास क्या, अविद्या कामना कर्म, इन सब से मुक्त हो जाता है। अब जिसको मोक्ष चाहिए उसको परमात्मा को जानना जरूरी, या कुछ करना नहीं आपको, आप सोच रहे कुछ करना ना, केवल जानना ही काफी है। जिस प्रकार से किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया, सांप समझकर बहुत बेचारा भयभीत आतंकित पीड़ित हो रहा, पसीना पसीना हो रहा, जैसे ही रोशनी आई ज्ञान हुआ कि रस्सी है, रज्जु रियम, ये रज्जु है, ज्ञान होते ही अब सांप को आपको मारना पड़ेगा, जहर देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, या सांप मरने के बाद दुर्गंध देगा, कुछ होगा? कुछ भी नहीं। रोशनी आए कि सांप खलास है ही नहीं। ऐसे ही सपने में बड़ा भारी प्रपंच था, बड़े भारी राजा बन गए। राजा बनने के बाद अब सपने में देख रहे कि पड़ोसी राजा से संग्राम हुआ, उसे देश निकाला, फतवा जारी कर दिया, दर दर भटक रहे। अब आप परेशान हैं, एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। सपने में किसी ने ऐसा देखा कि नहीं? आपने देखा कि नहीं? जरा कि देखा ही देखा, जरूर कभी देखे होंगे, देखा है जरूर। ऐसा सपना तो हमको याद नहीं है, सपने में अपनी मौत देखा हूं, 8-10 बार देखा हूं अपनी मौत। मौत जानते ना, मैं देख रहा हूं कि मर गया, चित ले गया, शमशान में ले जा रहे। ऐसा कई बार देखा, कई बार ऐसा भी देखा कि जैसे हवा नहीं चलती, सर हवा चलती, ऐसे शरीर से कुछ निकल गया, अब मैं मर गया। अब मर गया तो हमने कहा चलो अच्छा हुआ, उपाधि मिट गई। अच्छा सपने में भी सपना होता है, ऐसा होता है कि नहीं? अब तो नहीं, पहले कई बार होता था, सपना देखा, देखने के बाद शंका हो गई कि ये सपना है कि नहीं। शंका होता है ना कि मैं सपना देख रहा हूं कि नहीं। तो सपने में सपना होता है कि मैं सपना देख रहा हूं कि जाग रहा हूं। हाँ, और सपना में सपना क्यों होता है? उसका बीज यह है, उसका बीज यह है कि शुभ है कि अशुभ है। तो जैसे आंख खुली कुछ भी नहीं, ऐसे हम लोग भी अभी जो है ना मुंबई में जो बैठे हैं, सब सपना देख रहे, जागृत नहीं सपना देख रहे, अज्ञान निद्रा में सो रहे। जैसे आंख खुलेगी आप हैरान होंगे, अरे मैं तो यहां आराम से बैठा हूं, मजे से सच्ची आनंद स्वरूप हूं, मैं न भूखा न दर दर भटक रहा, न एक एक दाने के लिए तरस रहा। आप बड़े खुश होंगे, देखो कैसा कैसा सपना होता। तो वास्तव में जागृत भी एक सपना है, पर इस सपना का बाद कब होगा? जब जाग जाएंगे। किसमें जाएंगे? स्वरूप में, कि मैं सच्चिदानंद हूं। यहां जगना है, कुछ करना नहीं आपको, अपने स्वरूप को आपने जान लिया, स्वरूप में जग गए कि हमेशा के लिए सारे पासों से छुटकारा। जो आपके गले में पास बंधा हुआ है ना, अविद्या कामना वासना कर्म की, बस जैसे 9:32 हुआ कि बस पास खींचने लगा, चलो अब जो है दुकान खोलो, डिस्पेंसरी खोलो, किसी ने बोला कि वो व्यापार का खोलो, कोई बोला चलो खेती करने, ये पास तो है, छुट्टी है, चलो आज पास से मुक्त हो गए। दशहरा, दशहरा का मतलब जानते हैं ना? दशहरा मतलब कि ये जो 10 इंद्रियों में जो हमारी बहुत बड़ी अस्मिता है, दशहरे के दिन अक्सर क्या होता है कि भगवान राम दशमुख दशग्रीव राम का संहार करते। ये जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां 10 दिशाओं में भटका रही हमको। आत्मा सच्चिदानंद है, बिल्कुल राम, राम मतलब कि जिसमें रमण रमनते गुणस्मिन स राम, आनंद स्वरूप है। फिर भी ये 10 इंद्रियां इसको परेशान कर रहे। कैसे परेशान कर रहे पता आपको? जैसे वो एक चोर घर में प्रवेश कर गया था, तो उसने देखा ऊपर वाली जो थी ना सेठ जी को चोटी पर खींच रही, नीचे वाली पैर और बीच वाली धोती, परेशान। वही दशा हमारी, यहां तो 10 हैं, वहां तो 2 ही 3 पटरानियां थी ना। ये 10ों वृत्तियां, आंख नाक कान त्वचा, जो ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां हैं, ये 10ों वृत्तियां आत्मा रूपी राजा को पति को परेशान कर रही। बेचारा कह रहा चोटी छोड़ो, तो कोई बोला धोती छोड़ो, बाजू छोड़ो, पैर छोड़ो, छोड़ने का नाम नहीं। जब भगवान राम आएंगे, आप हृदय में बैठ जाएंगे, हृदय में बैठने के बाद इस दशमुख का उद्धार संहार कर देंगे, फिर आनंद ही आनंद। तो दशहरा का मतलब यही है कि 10 दोषों को, इंद्रियों की 10 दोष है ना, इसको हरण करके जीवात्मा का अपने आत्मा राम से मिले। दशहरा विजयादशमी, तो आप अविद्या पर विजय हासिल कर लेंगे, अब आप पास से मुक्त हो गए। चलो पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय भावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।